तो नेक्स्ट टिप, कान में बुरी बात पड़ने पर रंजीदा ना हो, क्योंकि हसद एक कदीम मरस है। जी देखिए, हम अक्सर टो में रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, फलां ने मुझे कहा, अस्तगफरुल्लाह, यानी मैं तो इतनी नेक पाक साफ और कोई मुझे बुरा कहे। तो ये आदत भी हमारे दिलों में दुख भरती है। किसी ने कहा कि फजाइल जमा करने की जिद्दोजहद करो, हासिदीन की मलामत की परवाह न करो। जान लो कि जिंदगी ही में अल्लाह की बंदगी हो सकती है, मौत के बाद हसद भी खत्म हो जाएगा। उलमाए मिस्र में से एक कहते हैं, जो लोग तनकीद पर जूद रंज हैं, यानी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, यानी तनकीद नहीं बर्दाश्त करते लोग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं ऐसे लोग कौन है, इन्हें अपने असाब में काफ़ी ठंडक डाल लेनी चाहिए ताकि सख्त और शदीद तनकीद का सामना कर सकें। यानी हमारे दुख और गमों की एक बहुत बड़ी वजह तनकीद है। अच्छे भले चहकते चुहकते बोल रहे होते हैं, ज़रा सी कोई तनकीद कर दे, चिपक के बैठ जाते हैं, अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कुछ लिखूँगी, मैं नहीं शेयर करूँगी, खाम खा तनकीद होती है हम पे। तो याद रखिए, आपकी सलाह नहीं होगी तो पीछे रह जाएंगे आप, और क्या होगा। एक कॉल यूँ है कि अल्लाह ने हसद के मामले में क्या ही अदल फरमाया, वो पहले हासिद को जलाना शुरू करता है और इंजामे कार उसे मार ही डालता है। यानी जो दूसरे को जलाना चाहता है वो पहले खुद जलता है। मुतबन्नी कहते हैं, यानी एक शायर थे, आदमी के जिक्र खैर से इसे नई जिंदगी मिल जाती है, जो बाकी ना रहे वो फजूल है। क्या समझ आया आपको? यानी जब कोई आपका जिक्र खैर करता है ना, तो गया कि आपको एक नई जिंदगी मिली, और जिसका बाद में जिक्र खैर नहीं है, उस बंदे में कोई खैर नहीं है। मतलब अपनी जिंदगी में लिसान सिदकिन फिल आखिरीन की दुआ करनी चाहिए, और कोशिश भी। हज़रत अली फरमाते हैं, मौत एक मजबूत ढाल है। एक हकीम ने कहा, बुज़दिल कई बार मरता है, बहादुर आदमी एक ही बार मरता है। जी बुज़दिल को तो हर रोज़ मरना पड़ता है ना। बुहरान के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों को राहत पहुंचाना चाहता है, तो इनको पुरसकून नींद की झपकी आ जाती है। जैसा कि मैदान उहद में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हों पर नींद तारी हुई, हत्ता कि कई बार इनके हाथों से तलवार छूट छूट कर गिर पड़ी। जी ये एक बड़ी प्यारी सी अलामत है अपने दिल को देखने की, कि दुख गम में नींद ज़्यादा आती है, नींद भी उड़ती है। लोग कहते हैं नींद ही नहीं आई, गम में सारी रात जागते रहे, और ईमान वालों को अल्लाह ऐसा प्यारा जट नैप देता है कि वो बिल्कुल फ्रेश अप हो जाते हैं। 5 मिनट भी बहुत है उनके लिए। और आप देखिए कि जिसको सदमा पहुँचा ना, उसको सुला दें, सो के उठेगा तो काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर हो चुकी होगी। एक नींद अहले बिदत पर भी तारी होती है, जैसे शबीब बिन यजीद पर तारी हुई थी, जो गद्दी पर सवार था और बहादुरों में शुमार किया जाता था। इसकी बीवी गजाला तो शुजात का बैकर थी, हज्जाज को इसी ने भगाया था। शायर कहता है, मुझ पर शेर हो, मैदाने जंग में शुतर मुर्ग बन जाते हो, जंग में गजाला के सामने आने की जुरत क्यों नहीं करते, या तुम इंसान नहीं परिंदा हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिए, कह दो क्या तुम हमारे लिए इंतजार कर रहे हो, एहदल हुस्ना यइन का, यानी दो में से एक भलाई का। हम भी तुम्हारे लिए ताक में बैठे हैं कि अल्लाह या तो अपनी तरफ से या हमारे हाथों तुम्हें अजाब का मज़ा चखाएगा, तुम भी देखो हम भी देखेंगे। और फरमाए, कोई भी शख्स अल्लाह के लिखे हुए फैसले के खिलाफ नहीं मर सकता। जो लोग दुनिया का अजर चाहते हैं, हम इन्हें दुनिया भी दे देते हैं, जो आखरत का सवाब चाहते हैं, इन्हें आखरत दे देते हैं, और शुक्र गुजारों को हम जल्द ही इनाम देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इसकी फिक्र लगा दे। शायर कहता है, जंग जुओं से वो खौफजदा हो रही थी, मैं इसे कह रहा था घबराओ नहीं, जो तकदीर में लिखा जा चुका है इसे एक दिन भी ज्यादा नहीं मिल सकता, इसलिए मौत के मैदान में सब्र करो। सब्र, यहाँ किसी को दवाम हासिल नहीं। जिंदगी का लिबास कोई इज्जत का लिबास नहीं कि बुरे आदमी ही से उतारा जाए। मतलब यह है कि मौत आएगी तो ना इसे कोई आगे कर सकता है ना पीछे। हजरत अली फरमाते हैं, किस दिन मौत से भागूं, जिस दिन मौत नहीं लिखी या जिस दिन लिखी है। जो मुकद्दर नहीं है इसका खौफ नहीं, जो मुकद्दर है इससे मफर नहीं, भाग नहीं सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, राहे खुदा में मौत की तलब करो, जिंदगी मिल जाएगी। क्यों? बला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, बला ख़याऊं वला किल्ला तश्रुन। दो जगह सूरह आल इमरान में भी, सूरह बकरा में भी, खुलासा यही है कि शुहदा को मुर्दा ना कहो। तो फिर क्या सीखा? कि लोगों की बातों पे दिल खट्टा ना करें। क्योंकि हसद करने वाले कुछ नए लोग नहीं हैं, शुरू से रहे। और ये जो हमने कॉल पढ़ा कि हसद पहले हासिद को जलाता है और अंजाम में तो खुद ही जल जाता है, क्या इसने आपको और मुझे हसद से दूर रहना नहीं सिखाया? सबसे पहले किसने हसद किया था? इबलीस, अंजाम अब्दी जहन्नम। फिर उसके बाद जिसके हसद का जिक्र कुरान पाक में, वो है काबिल। दो भाई थे, इब्न आदम, आदम के दो बेटे। इंसानों का पहला हासिद, भाई को कत्ल किया और हर कत्ल का गुनाह भी उसी पर जाता है। मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है 5039, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, आपने फरमाया कि साबिका उम्मतों की बीमारी तुम्हारी तरफ मुंतकिल हो गई है और वो है हसद और बुग़्ज़ो अदावत, और वो नेकियों को ज़ायल करने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाल मूंडती है यानी शेव करती है बालों को, बल्कि वो दीन को यानी नेकियों की फसल को ख़त्म कर देती है। तो हसद नहीं करना, अल्लाह की बाँट से नाराज़गी का इजहार है हसद। और आले इमरान 145 में क्या देखा? कोई भी शख्स अल्लाह के लिखे हुए फैसले के खिलाफ नहीं मर सकता। जो लोग दुनिया का अजर चाहते हैं, हम इन्हें दुनिया दे देते हैं, जो आखरत का सवाब चाहते हैं, इन्हें आखरत दे देते हैं, और शुक्रगुजारों को हम जल्द ही इनाम देंगे। अल्लाह में शुक्रगुजार बना ले। तो सवाल पैदा होता है कि फिर हमारा रद्दे अमल यानी रिएक्शन क्या होना चाहिए? पांच चीज़ें देख लेते हैं। मसलन हसद करता है कोई आपसे, हसद की वजह से आपके बारे में बातें करे, तो उस वक्त सोच लीजिए कि अल्लाह ना चाहे तो मेरा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह ही चाहता है तो ही कोई नुकसान होता है और अल्लाह ही चाहता है तो कोई नफ़ा मिलता है। फिर इसी तरह से परवाह ना करें, क्योंकि नबियों और बादशाहों तक को बातें होती रहीं। फिर इसी तरह एक और रवैया रखिए कि हासिद पर रहम खाएं, क्योंकि बेचारा अपनी ही आग में जल रहा है। आप देखिए ना, कोई किसी के लिए आग जलाए और ख़ुद उसी में खुद जलने लग जाए तो क्या आप उसके ऊपर रश करेंगे? हरगिज़ भी नहीं रश करेंगे। फिर इसी तरह एक रद्दे अमल हमारा क्या होना चाहिए कि बुरी बातें सुनकर खामोशी। बेहतरीन जवाब है। जो आपको बुलवा नहीं पाता ना, वो आपके आगे हार जाता है, कहता है कि इसने कौन सी मेरी बात सुन के माननी है। तो क्या सीखा? कूल, खाम, रिलैक्स्ड। कभी भी कोई चीज़ आपको दुख दे, फौरन पूछे मेरा क्या जाता है, कर लो और कह लो कुछ और भी है, कुछ और तोहफे भी लाए आप मेरे लिए आज बातों के, कोई और इल्ज़ाम है, कोई पत्थर, फूल, मोती, सितारे, चमकी चमकी अच्छी अच्छी बातें करिए, शर्मिंदा होगा। और मैं कह सकती हूँ कि आप चिढ़े नहीं, अगला चिढ़ाएगा नहीं। आपने देखा होगा घर में दो बच्चों की बड़ी लड़ाई होती है, पता है क्यों? इसलिए कि उनको पता लग जाता है कि ये चिढ़ती है, ये रोती है। कई दफ़ा बच्चों को लोग रुलाते हैं, बच्चों को चिड़चिड़ाते हैं। आप चिढ़े नहीं, चिढ़ाने वाला थक जाएगा। आप देखिए कि गम करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, फरिश्ते आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और मोमिनीन हर नमाज में आपके साथ हैं। नबी करीम की सिफारिश की उम्मीद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, और कुरान पाक में इतने अच्छे वादे किए गए हैं। इन सब से ऊपर अरहम राहमीन की रहमत है, यानी एक से एक अच्छी बात सोचें। खुश रहना जिसको है उसको वजह की भी ज़रूरत नहीं है, रंज ना करें, क्योंकि नेकी का बदला 10 गुना से 700 गुना तक मिलता है। यानी आप क्यों लोगों से नेकियों पे कोई बदले और उम्मीदें लेना चाहते हैं और उम्मीदें बांधते हैं? अल्लाह ताला अगर चाहे तो आपको खुद अपने पास से दें। देखिए हम लोगों से मांग रहे होते हैं ना, हालांकि हकीकत ये है कि अगर लोग ना भी कुछ दें तो कम से कम तो अल्लाह आपको 10 टाइम दे ही रहा है और 700 गुना भी देता है। इसके बरक्स आप देखिए कि बुराई जितनी होती है उसका बदला उतना ही है और अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। तो क्या अल्लाह के करम की कोई मिसाल है? क्या अल्लाह ताला के जूदो सुखा के करीब कोई जूदो सखा हो सकती है? यानी जितना अल्लाह ताला जनरस है कोई और हो सकता है? आपको गम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मवाहिद हैं, आप अल्लाह को एक मानती हैं। और याद रखिए कि हम क्यों गम करें, हम तो मिल्लत इस्लामिया में से हैं, अल्लाह ने हमें किबले की पैरवी की तौफीक दी। क्या आपको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है? फिर गुनाहों पे आप नादिम भी होते हैं, नेकियों पे आप खुश भी होते हैं, तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो कहते हैं ना कि मोमिन के तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, इधर ना मिला उधर, इधर भी मिल गया तो उधर भी मिल गया, तो आपके पास तो खैर ही खैर है। लेकिन असल बात यह कि एहसास नहीं है। हम खुशहाली में हों या तंगहाली में हों, मालदार हों या फकीर हों, शिद्दत हो या तंगी हो, बहरहाल आप खैर पे हैं। और वो हदीस तो कई बार सुन चुके कि मोमिन का मामला अजीब है, इसका मामला खैरी का खैर होता है, यानी मोमिन के साथ हमेशा खैर होती है, मुसीबत पहुंची तो सब्र और खुशी मिली तो खैर, और शुक्र अदा करता करता इस दुनिया से चला जाएगा तो जिंदगी के मसाइब पर दुखी होना छोड़ दें। अगली टिप है, मसाइब पर सब्र कामयाबी का रास्ता। आप देख रहे हैं कि वही चीज़ें हैं जिनको हम घूम फिर के समझ रहे हैं, और ये निकलेंगी तब जब हम निकालेंगे अपने अंदर से। गम ना करो, सब्र से काम लो, सब्र निजात और सआदत का रास्ता है। सब्र करो और सब्र अल्लाह के लिए और अल्लाह की राह में होना चाहिए। सब्र जमील अख्तियार करो, जो हाले ज़ार तुम बयान करते हो इस पर अल्लाह ही से मदद ली जाती है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। सब्र जमील अख्तियार करो, तुमने जो सब्र किया है इस पर सलामती है। मसाइब के वक्त अहले सुन्नत तीन चीज़ों से काम लेते हैं, एक है सब्र वस्तईनु बिस्सब्री, और इसी तरह दुआ और मुसीबत के खात्मे का इंतज़ार। शायर इस बात को कैसे प्यारे अंदाज में बयान करता है, उन्होंने हमें मौत के जाम पिलाए, हमने इनको, लेकिन हम मौत पर ज़्यादा सब्र करने वाले थे। क्या है, ज़रा से इसको देखिए, उन्होंने हमें मौत के जाम पिलाए, हमने इनको, यानी दोनों ये काम कर रहे थे लेकिन मौत पर ज़्यादा सब्र करने वाले थे। मतलब ये कि जब वक्त पड़ता है ना तो फिर इंसान को सब्र आ ही जाता है। हमेशा अल्लाह ताला पर नज़रें लगाकर अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक हदीस में आता है कि अज़ियत पर अल्लाह से ज़्यादा सब्र कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि नाउज़ु बिल्ला, अल्लाह के बीवी बच्चे हैं, हालांकि अल्लाह ही ने इन्हें आफियत दी और वही रोज़ी देता है। क्या पता चला, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी भी इस बात की फिक्र ना करें कि लोग आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं कि बुरा, क्योंकि लोग तो अल्लाह ताला के साथ इतनी खिलाफ हकीकत बातें करते हैं। देखिए ना, जिसको हमारे कल्चर में कहते हैं ना सर ना पाँव, बात नहीं तो भतंगड़ कहाँ से बनेगा। लेकिन कुछ ना होकर भी लोग अल्लाह के बारे में बातों के भतंगड़ बनाए रखें तो फिर मैं आप तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लुक पॉजिटिव। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, आज एक छोटा सा क्लिप देखने का मौका मिला कि एक शख्स जिसके हाथ नहीं है, दोनों बाजू कटे हुए हैं पैदाइशी तौर पे शायद, अब अगर चाहते तो वो किसी भी अंधेरों में गिर जाते, ज़िंदगी सारी रो रो के बिस्तर पे गुजरती, लेकिन अपने गुमान के मुताबिक जो सोचा वो पा लिया। तो हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छी बात कीजिए। कोई आपके बारे में नेगेटिव बात करने लगे, फ़ौरन रोके, सुनिए एक्सक्यूज़ मी, कोई कमी नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, कोई कमी नहीं, कोई महरूमी नहीं। और यकीन कीजिए, जो इस दर्जे का मुवाहिद हो जाता है ना, फिर अल्लाह भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। हम दास्तान गम सुनाते हैं, क्या बताऊँ, ये भी कोई नहीं, वो भी नहीं, ये मिला था तो खो गया, ये मिला भी तो अच्छा कोई नहीं मिला। नेगेटिविटी है। खुद से कहें, यहाँ बैठे अपने आप से कहें, दुनिया में मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, दुनिया में मेरे शौहर से बेहतरीन शौहर कोई हो नहीं सकता, जो बच्चे मिले मुझे दुनिया के बेहतरीन बच्चे हैं। एक एक रिश्ते का नाम लीजिए, शक्लो सूरत पे बात करें। ये है पॉजिटिविटी जो आपने सीखनी खुद है। दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते, रास्ता दिखाते हैं। बड़े से बड़ा साइकाट्रिस्ट पैसे लेगा और आपसे चंद बातें करेगा और आपको कहेगा जाके हेल्प योर सेल्फ। आप उसकी बातों पर गौर करने के बजाय घर आकर नशे की गोली खाकर सो जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला मूसा पर रहम करें, इन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा लेकिन उन्होंने सब्र किया, और फरमाया जो सब्र का मुजाहरा करता है अल्लाह ताला उसे साबिर बना देते हैं। शायर कहता है, तुम बुलंदी और शर्फ के लिए इतनी सुस्ती से चल रहे हो, यानी चाहते तो ये हो कि बुलंदी मिले, इज्जत मिले, लेकिन चलने की रफ्तार इतनी सुस्त है, जबकि लोग इसके लिए ज़बरदस्त कोशिशें करते हैं। बहुत से तो उकता जाते हैं, लेकिन जो सब्र और अजीमत से काम लेते हैं वो इस बुलंद मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बुजुर्गी और बड़ाई कोई खजूर नहीं जिसे खा लो, जब तक तलही का मज़ा न चखो तुम बड़ाई और अजमत को नहीं पा सकते। मतलब ये है कि बुलंद मुकाम ख्वाहिशों और आरजुओं से हासिल नहीं होता, बल्कि अज़्म इरादा और तदबीर व अमल से हासिल होता है। तो आप कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, तो घर बैठे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या सीखा कि मुसाइब पर सब्र कामयाबी का रास्ता है। सब्र और इससे मुतल्लिक अल्फाज कुरान पाक में 103 बार हैं कमोबेश। यानी अगर आप लफ्ज़ सब्र डाल दें डिक्शनरी में, या आप देखिए कि कुरान पाक में ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है। और इसकी मैं जितनी फॉर्म्स देखती हूँ ना, तो मैंने कई दफ़ा ये जुमले बोले हैं कि पूरा दीन सब्र है। मसलन अगर सब्र ना हो तो एक अल्लाह पे राज़ी रहता है बंदा? इतला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तक ही सब्र करना पड़ता है। एक रसूल पे बंदा राज़ी नहीं रह सकता जब तक सब्र ना हो। और इसी तरह नमाज पढ़ी जाती है जब तक सब्र ना हो। लोगों की महरूमियों पे उनको अता किया जा सकता है अगर सब्र ना हो। यानी कोई रंग नहीं, यही सब्र है जो वक्त पड़ने पे शुक्र में ढलता है, यही कनात है, यही इस्तकामत है। 103 बार इस रूट से कुरान पाक में बात आई है। और इसी तरह सब्र कहते हैं किसी को तंगी की हालत में रोक रखना। कभी मुसाबरा होता है तो एक दूसरे के मुकाबले पे, इस बिरु व सा बिरु व रा भी तो सूरह आल इमरान के बिल्कुल एंड पे कहा गया। इसी तरह अकल और शरीयत के तकाजे के मुताबिक अपने आप को रोक रखना। यानी दिल चाह रहा है कुछ करने को लेकिन शरीयत रोक रही है, नहीं करनी की बात। कुछ ना करने को दिल करे लेकिन करना है क्योंकि शरीयत का तकाजा है, तो ये सब्र है। किसी मुसीबत पर नफ्स को रोकना। जब कभी अकेला शख्स कश्ती चलाता है, कभी कभी सवारी नहीं होती तो वो अकेला होता है। अब वो जब बैठा होगा तो कश्ती उस तरफ झुकेगी ना, तो वो अपने वजन को बैलेंस करने के लिए एक पत्थर रखता है कश्ती में। कभी आपके माड़ी या पाकिस्तान के किसी साहिली किनारे पे जाएं और कश्ती में बैठे ना, तो आपको अंदर एक पत्थर दिखेगा। समझ नहीं आता ये क्यों है, पहले ही इतना वजन है, अब ये पत्थर भी है। वो इसलिए कि जब वो अकेला होगा ना तो दूसरी तरफ वो पत्थर रखेगा, उस पत्थर को मुसाबरा कहते हैं। तो जिंदगी में हमेशा पत्थर रखिए अपने पास, कि जब दुख आए तो उसको पत्थर को दिल पे रखे और ठंडक में बदल लीजिए। और इतना अपने आप को दबा के रखिए कि जुबान से बात ना गलत निकले। और याद रखिए कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई सब्र नहीं करता। लोग उसके बेटे बेटियाँ बीवी और बच्चे तक कह देते हैं और अल्लाह ताला कहता है कहते रहो मुझे क्या लगे। तो अल्लाह से सीखिए सब्र करना, क्योंकि अल्लाह सबूर भी है। प्यारा नाम है, मुबालगे की हद तक इस अजमत के मुकाम पर पहुँचने से पहले सब्र लाजिम है। अम्बिया का शेवा है सब्र जमील। इसी तरह मसाइब पर बेसब्री करना, ये भी बेसब्री है। नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल भी सब्र के ख़िलाफ़ है। और ऐसे लोगों को फिर जहन्नम की आग पर सब्र करना पड़ेगा। सूरत बकरा 175 में हम देखते हैं। तो सब्र के लिए चंद जुमले याद रखिए, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। क्या सब्र और शुक्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कॉइन देखो ना, एक तरफ कुछ है दूसरी तरफ, कभी उछालते हैं ना तो एक कॉइन ऊपर आता है, कभी दूसरी तरफ। बस एक सब्र है, एक शुक्र है। और इसी के साथ एक जुमला और बोल देती हूँ। सी सॉ बचपन में खेली होगी, लकड़ी के एक तख्ते पे एक साइड पे आप बैठते हैं, दूसरे पे आपकी दोस्त। आप जोर लगाते हैं तो आप ऊपर चले जाते हैं, वो लगाती हैं तो वो ऊपर आती हैं, एक ऊपर तो एक नीचे। इसी तरह ज़िंदगी एक सी सॉ है, कभी सब्र करना पड़ेगा तो कभी शुक्र करना पड़ेगा। और हर हाल में जो शुक्र गुजार है ना, असल साबिर वही है। सब्र शुक्र में और शुक्र सब्र में ढलता है। और सब्र की बेहतरीन मिसाल हज़रत यूसुफ़ है। सब कुछ देखते जानते भालते भी अपने भाइयों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। कई सालों के बाद जेल से निकले और तख्त पे चले गए, कोई अकड़ नहीं, कोई शोमारी नहीं, और बाप की मोहब्बत से निकल कर कुएं में डाल दिए गए। इट्स ओके, हमेशा कहते हैं कि मेरे रब ने मुझे बेहतरीन जगह दी। मेरा रब है जो मुझे हमेशा ही मुश्किलों से निकालता है, मुश्किल में डालने का जिक्र ही नहीं करते। तो ऐसे ही लोगों के अल्लाह के यहाँ बुलंद मुकाम है। दुनिया में भी अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है सब्र वाले के, आखिरत में तो करेंगे। मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो ना मिले, मैं खुश हूँ। खबरदार मेरे रब के बारे में मुझे कुछ ना कहना। देखिए बाज़ लोग आपको भड़काते हैं ना, बस एक बात, बुरे लोग जो हैं वो बीवियों को अपने शोहर के ख़िलाफ़ बदगुमान करेंगे, शोहर को बीवी के ख़िलाफ़ करेंगे, सास को बहू के, बहू को सास के, मिसाल है। इसी तरह कुछ लोग अल्लाह के भी ख़िलाफ़ करते हैं, आपको आपके सामने हमदर्दी लेके आएंगे। और ये हैं वो जिनको कहते हैं कि वला तखाफून लहुम मतलाम, दुश्मन मुखालफत करता है, दोस्त मलामत करता है। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें और नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के ख़िलाफ़ ही बोलें। हाँ अल्लाह ने दिया ही नहीं, बड़ी दुआएं मांगी, खाना कपा में भी जाके रोई, ये किया वो किया, मिलता ही नहीं, मुझे तो अल्लाह देता ही नहीं, मेरी तो सुनता ही नहीं। और नौजुबिल्ला मैंने तो पता नहीं अल्लाह का क्या बिगाड़ा हुआ है, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, बस इससे ज़्यादा कड़वी बात मैं ना करूँ तो बेहतर है। ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहिए। अंसार के कुछ लोग थे, अल्लाह के नबी से सवाल किया, मांगा कुछ, दे आस्क फॉर समथिंग, आपने उनको दे दिया। उन्होंने फिर सवाल किया, आपने फिर दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो माल था वो सब ख़त्म हो गया। फिर आपने फरमाया कि अगर मेरे पास माल और दौलत हो तो मैं इसे बचा के नहीं रखूँगा, मगर जो शख्स सवाल से बचता है तो अल्लाह ताला भी इसे सवाल करने से महफूज रखते हैं। यानी जब तक ना ही मांगा जाए वही बेहतर होता है, मांग के तो इंसान शर्मिंदा ही होता है। और इसी तरह जो शख्स बेनियाजी बरतता है तो अल्लाह ताला इसे बेनियाज बना देता है, और जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी इसे सब्र व इस्तक़लाल दे देता है। और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली, यानी दिस इज़ अ गिफ्ट। ये बुखारी की रिवायत है 1469। बल्कि रेफरेंस के बगैर अगर एक और रिवायत बोल दूँ कि अल्लाह ताला सब्र का तोहफा देता ही उनको है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। हम कहते अच्छा, हम तो समझे थे कि अल्लाह उन पे गम डालता ही नहीं है, तो नहीं, नेमतों में से बड़ी नेमत है सब्र। अल्लाह आपको मुझे अता कर दे। खुशियों का सब्र तो और मुश्किल है गमों के सब्र से। हम कहते गम पड़ा तो सब्र करेंगे, नहीं, बड़ा आसान है गम का सब्र, क्योंकि बहुत सारे सहारे होते हैं उसमें। खुशी का सब्र बड़ा मुश्किल है। मतलब बनी इसराइल देखिए कि गम पड़ा, फिरौन ने जुल्म सितम किए, बेटों को कत्ल किया, कराया, बेगार ली, बहुत दबे, अल्लाह ने मूसा जैसा प्यारा लीडर दे दिया। इधर फिरौन डूबा, ये निकले, उधर वादी यतीम में पहुंचे, अब आज़ाद थे, तो यहाँ सब्र ना कर सके। लन नसबिर अला तामी वाहिद, तो याद रखिए खुशियों में सब्र करना सबसे मुश्किल है।